आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर भगवा परचम लहराएंगे, जो मंदिर की तामीर मुकम्मल होने की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर खसूसी प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 15 मावनवाजों ने पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी की है। इथोपिया में आतिशफशां से निकलने वाली राख के भारत पहुंचने के तनाजुर में DGCA ने एयरलाइन से कहा है कि वो आतिशफशां की राख से मुतासरा इलाकों से गुरेज करें। भारत और अफगानिस्तान ने टेक्सटाइल के शोबे में इश्तराक बढ़ाने की खातिर बातचीत की है। और ढाका में भारत ने चीनी ताइपी को 35-28 से हराकर लगातार दूसरी मरतबा खवातीन का कबड्डी आलमी कप जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाएंगे। वो श्री राम जन्मभूमि मंदिर में परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सप्त मंदिर भी जाएंगे, जहां महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज गुहा और माता शबरी से वाबस्ता मंदिर हैं। इसके बाद जनाब मोदी शेष वत्र मंदिर जाएंगे। बाद में वजीर आजम माता अन्नपूर्णा मंदिर जाएंगे और राम दरबार गर्भगृह में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वो रामलला गर्भगृह में दर्शन करेंगे। दिन में 12 बजे के आसपास वजीर आजम अयोध्या में पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा झंडा लहराएंगे, जो मंदिर की तामीर का काम मुकम्मल होने और सकाफती जश्न और कौमी इत्तेहाद के एक नए दौर के आगाज की अलामत है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार।
ध्वजारोहण प्रोग्राम श्री राम के अभिजीत मुहूर्त और मां सीता के विवाह पंचमी के मौके पर मार्गशीर्ष के महीने में शुक्ल पक्ष की पवित्र पंचमी पर मुनक्किद हो रहा है। ये तारीख सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस भी है, जिन्होंने 17वीं सदी में लगातार 48 घंटे तक अयोध्या में ध्यान किया था। ये तिगुना परचम 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा है और इस पर ओम के नक्श के साथ रोशन सूरज की छवि है, जो भगवान श्री राम की ताब और शुजात को जाहिर करती है। अयोध्या से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस की खसूसी तकरीब में शिरकत करने के लिए आज शाम कुरुक्षेत्र जाएंगे। प्रोग्राम के दौरान जनाब मोदी 350वें शहीदी दिवस के मौके पर एक खसूसी सिक्का और यादगारी डाक टिकट जारी करेंगे। मरकजी हुकूमत गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के एजाज में एक साल तक जारी रहने वाली तकरीबात का एहतमाम कर रही है। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नई तामीर शुदा इमारत पंच जानिया का भी इफ्तिताह करेंगे। इस इमारत को भगवान कृष्ण के मुकद्दस शंख के एजाज में डिजाइन किया गया है। बाद में शाम को जनाब मोदी ब्रह्मा सरोवर में दर्शन और पूजा करेंगे, जो मुल्क के मुकद्दस तरीन मजहबी मकामात में से एक है और श्रीमद भगवद गीता के रूहानी इल्हाम से वाबस्ता है। उनका यह दौरा इत्तेफाक से बैन अल-अक़वामी गीता महोत्सव के मौके पर हो रहा है, जो इस वक्त 15 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक कुरुक्षेत्र में जारी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कल ममनुआ तंजीम CPI मावनवाज के 15 सरगर्म कैडरों ने हथियार डाल दिए। इन लोगों पर मजमूई तौर पर 50 लाख रुपए का इनाम था। 10 मर्द और 5 खवातीन पर मुश्तमिल इस ग्रुप ने कल बाजाब्ता तौर पर सुकमा पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी की। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए सुकमा के SP किरण चौहान ने कहा कि मावनवाजों की ये खुद सुपुर्दगी इस महीने के अवाइल में इंतहाई मतरूब मावनवाज कमांडर माधवी हिदमा की हलाकत के बाद पैदा होने वाली क्यादत की कमी और बढ़ते हुए खौफ का बराह रास्त नतीजा है।
जिला सुकमा में कल पुलिस और सीआरपीएफ सामने 15 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 15 नक्सलियों में 4 नक्सली पीएलजी बटालियन नंबर 1 के हैं, अन्य नक्सली कुंटा एरिया कमेटी, किस्टाराम एरिया कमेटी, केरलापाल एरिया कमेटी के सदस्य हैं। सभी नक्सली जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसके अलावा सुकमा जिले में जो कैंप खुले जा रहे हैं उससे प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किए हैं। सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसके अंतर्गत सभी नक्सलियों को लाभ दिए जा रहे हैं।
भारत के 56वें बैन अक्वामी फिल्म फेस्टिवल 2025 में आजमूदाकार अदाकार धर्मेंद्र के इंतकाल पर फिल्म साजों, अदाकारों, प्रोड्यूसरों और फेस्टिवल के मुंतजमीन की जानिब से ताजियती पैगामात मुसलसल मौसूल हो रहे हैं। धर्मेंद्र का कल इंतकाल हो गया था। भारत के बैन अक्वामी फिल्म फेस्टिवल इफ्फी का इनेकाद करने वाली इंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा ESG ने अदाकार धर्मेंद्र के एहतराम में कल स्टेज के अपने तमाम प्रोग्राम रद्द कर दिए। अलबत्ता मुकर्रा फिल्मों की स्क्रीनिंग का अमल जारी रहा। पेश एक रिपोर्ट।
धर्मेंद्र के लिए इफ्फी 2025 में खिराज अकीदत का सिलसिला जारी रहा, जहां फिल्म साजों, फनकारों और सिनेमाई दुनिया से वाबस्ता कई नामचीन लोगों ने उनको खिराज तहसीन पेश किया। इफ्फी एस्टा के इख्तिताम पर फनकारों ने धर्मजी के मकबूल नगमात गाए और स्टेज पर तिरंगा लहराकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया, जहां पीछे धर्मजी की दो बड़ी तस्वीरें नक्श थीं। धर्मेंद्र की जिंदगी और मीरास का जश्न मनाने के लिए एक खसूसी प्रोग्राम 27 नवंबर 2025 को कला अकादमी में मुनक्किद किया जाएगा। मणिपुरी फिल्म बैटल फील्ड, जो दूसरी जंग के अजीम के दौरान कोहिमा और इम्फाल में होने वाली जंगों की अक्सबंदी करती है, उसका आलमी प्रीमियर इंडियन पैनोरामा सेक्शन में किया गया। इस फिल्म में जंग अजीम दोम के मणिपुर की आबादी पर पड़ने वाले असरात को दर्ज किया गया है। आज की इफ्तिताही फिल्में द जानिटर और ड्रीम्स हैं, जबकि दूसरी फिल्मों में होया पाया, बैलेंस, माई फादर्स शैडो वगैरह शामिल हैं। आज की मास्टर क्लास तमाशा बर्फी के मशहूर फिल्म मेकर रवि वर्मन लेने वाले हैं। खबरनामे के लिए आदर्श और निखिल के साथ सायरा मुज्तबा।
ये खबरनामा आकाशवाणी से नष्ट किया जा रहा है। इथोपिया में आतिशफशां से निकलने वाली राख के भारत पहुंचने के तनाजुर में DGCA ने एयरलाइंस और हवाई अड्डों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जो आतिशफशां की राख की वजह से मुमकिना रुकावट से निपटने के बारे में है। DGCA ने एयरलाइंस से कहा है कि वह आतिशफशां की राख से मुतासरा इलाकों से गुरेज करें। इथोपिया में एक आतिशफशां से निकलने वाली राख का गुबार कल रात शिमाल मगरबी भारत के बाज हिस्सों से गुजरते हुए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, कौमी राजधानी खित्ते और पंजाब को पार कर गया। इससे साफ दिखाई देने में रुकावट पड़ गई और हवाई जहाजों की परवाजें मुतासिर हुई हैं। इथोपिया में हाइली गोबी आतिशफशां के फूट पड़ने से राख के गुबार से हवाई जहाजों की परवाजों पर असर पड़ा है। अकासा एयर, इंडिगो और KLM उन फजाई कंपनियों में शामिल हैं जिन्होंने राख के गुबार की वजह से कुछ परवाजें मंसूख की हैं। इथोपिया के हेली गोबी आतिशफशां से तकरीबन 10,000 साल में पहली मरतबा इतवार के रोज राख निकलना शुरू हुई थी, जिससे ओमान और यमन की समत बहर अहमर के इलाके में बड़े पैमाने पर राख का गुबार फैल गया और इसके बाद ये मशरिक की जानिब और आगे बढ़ गया। हुक्काम इस पर नजर रखे हुए हैं। भारत और अफगानिस्तान ने टेक्सटाइल के शोबे में इश्तराक को मुस्तहकम करने के मामले पर बातचीत की है। टेक्सटाइल्स की वजारत ने बताया है कि अफगानिस्तान के इक्तसादी ताल्लुकात महकमे के डायरेक्टर जनरल शफीउल्ला आजम की क्यादत में आला सतह के एक वफद ने नई दिल्ली में टेक्सटाइल्स वजारत के तजारती सलाहकार बिपिन मेनन से मुलाकात की। इस मीटिंग में दोनों फरीकों ने बाहमी ताउन के मुख्तलिफ तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। इनमें अफगानिस्तान के कपास के किसानों के लिए तकनीकी मदद और तरबियत, माल भेजने और वीजा में सहूलत, नीज दोनों मुल्कों के सनअती इदारों के दरमियान करीबी राबते शामिल हैं। अफगानिस्तान ने कपास की पैदावार वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क के तौर पर भारत के तजर्बे और महारत को बरूए कार लाने में दिलचस्पी का इजहार किया। नरेंद्र मोदी हुकूमत के जरिए मुख्तलिफ शोबों में GST की शरहों में कटौती किए जाने के ऐलान के साथ ही 22 सितंबर से GST बचत उत्सव शुरू हुआ, जिससे मुल्क के सभी शहरियों को फायदा पहुंच रहा है। हमारे नामनिगार एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कि अगले सिलसिले की GST इस्लाह से किस तरह स्टेशनरी सामान पर टैक्स की शरहों में कटौती के जरिए तालीम के शोबे को फरोग हासिल हो रहा है।
سرکار نے اسٹیشنری سامان پر ٹیسٹ کی شرحوں میں کٹوتی کر کے طلبا اور اسٹیشنری کی صنعت کو کافی راحت فراہم کی ہے. جی ایس ٹی میں نئی اصلاحات کے تحت پینسل شارپنرز، نوٹ بکس، گراف بکس، نقشے اور چارٹس جو پہلے 12% ٹیکس والے زمرے میں شامل تھے اب مکمل طور پر ٹیکس سے مستثنا ہو گئے ہیں. اسی طرح اریزرز پر پہلے 5% جی ایس ٹی لاگو تھا، اب کوئی ٹیکس نہیں ہے. ان اصلاحات سے مجموعی طور پر کنبوں کے اخراجات میں کمی آئی ہے اور انہیں کافی فائدہ پہنچ رہا ہے. اسی طرح اسٹیشنری مارکیٹ کی حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے. ان اشیاء پر جی ایس ٹی کم ہونے سے نہ صرف تعلیمی وسائل کم خرچ ہوئے ہیں بلکہ پورے ملک میں تعلیم تک رسائی بھی بہتر ہوئی ہے. دلی سے آرزو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
محنت سے متعلق ضابطوں میں نئی اصلاحات کے بارے میں اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایئر انڈیا ایئر کرافٹ انجینئر ایسوسی ایشن دلی کے جنرل سیکرٹری ایس این بھٹ نے ملک میں 4 لیبر ضابطوں کے نفاذ کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے قابل تعریف اقدام قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ محنت سے متعلق نئے ضابطوں کے تحت وزیراعظم مودی نے گگ ورکرز، پلیٹ فارم پر کام کرنے والے افراد اور تمام غیر منظم سیکٹر کے ملازمین کو برابری کا حق دیا ہے. بھارتی موسمیات محکمے IMD نے آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ اور شمال مغربی اتر پردیش کے الگ الگ مقامات پر آج گھنا کوہرا چھائے رہنے کی پیش گوئی کی ہے. موسمیات کے محکمے کے مطابق اگلے 2 روز کے دوران ملک کے شمال مغربی علاقوں میں کم سے کم درجہ حرارت میں 2 سے 3 ڈگری سیلسیس کی کمی آنے کا امکان ہے. موسمیات محکمے نے تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل کے علاقوں میں آج کہیں کہیں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. موسمیات کے محکمے نے کہا ہے کہ کیرلا، ماہے اور لکشدیپ کے علاقوں میں کہیں کہیں شدید بارش ہونے کا امکان ہے. کبڈی میں ڈھاکہ میں بھارت نے خواتین کبڈی کا عالمی کپ لگاتار دوسری مرتبہ جیت لیا. بھارتی ٹیم نے اپنا دبدبہ برقرار رکھتے ہوئے فائنل میں چینی تائپے کو 35-28 سے شکست دی. بھارت نے سیمی فائنل میں ایران کو 33-21 سے شکست دی تھی. بھارتی ٹیم نے گروپ اسٹیج کے بھی 4 میچ جیتے تھے. اس ٹورنامنٹ میں کل 11 ٹیموں نے شرکت کی. وزیراعظم نے مودی نے بھارت کے 2025 خواتین کبڈی عالمی کپ جیتنے پر مبارکباد دی ہے. انہوں نے بھارتی خواتین ٹیم کی صلاحیت اور مہارت کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اس جیت سے نوجوان کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ ملے گا. وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی کبڈی عالمی کپ 2025 جیتنے پر بھارتی خواتین ٹیم کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر داخلہ نے اسے بے حد فخر کا لمحہ قرار دیا. انہوں نے مزید کہا کہ خواتین کبڈی ٹیم نے تاریخ رقم کر دی ہے. جناب شاہ نے مزید کہا کہ یہ جیت اس بات کو دہراتی ہے کہ بھارت کے کھیلوں کی صلاحیت کسی سے بھی کم نہیں ہے. انہوں نے ٹیم کی مستقبل کی کوششوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ.
شکریہ عمار. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب، پرتاب اور ملاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے ایودھیا کے شری رام جنم بھومی مندر کی تقریب میں وزیراعظم نریندر مودی کے ذریعے پرچم کشائی اور مختلف مذہبی تقریبات میں حصہ لینے کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاب کی خبر ہے، وزیراعظم آج کروکشت بھی جائیں گے جہاں وہ مختلف پروگراموں میں شرکت کے بعد گرو تیغ بہادر جی کی 350 شہیدی دیوس کی یاد میں ایک یادگاری ٹکٹ اور خصوصی سکہ جاری کریں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے جسٹس سوریہ کانت کو بھارت کے 53 چیف جسٹس کے عہدے کا حلف دلایا. اس خبر کو سبھی اخباروں نے خصوصیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاب نے تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ بھارت اور کینیڈا کے درمیان اہم معدنیات، جوہری توانائی، AI اور دیگر شعبوں میں اشتراک کی صلاحیت موجود ہے. الوداع دھرمیندر. بالی ووڈ کے عظیم اداکار کا انتقال، ایک عہد کا خاتمہ. صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم سمیت سرکردہ شخصیات نے پیش کی تعزیت. اس خبر کو سبھی اخباروں نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے.
آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نے مودی آج ایودھیا میں شری رام جنم بھومی مندر پر بھگوا پرچم لہرائیں گے جو مندر کی تعمیر مکمل ہونے کی علامت ہے. وزیر اعظم ہریانہ کے کروکشیتر میں گرو تیغ بہادر جی کے 350 شہیدی دیوس کے موقع پر خصوصی پروگرام میں بھی شرکت کریں گے. چھتیس گڑھ کے سکما ضلع میں 15 ماؤ نوازوں نے پولیس کے سامنے خوشپردگی کی ہے. ایتھوپیا میں آتش فشاں سے نکلنے والی عراق کے بھارت پہنچنے کے تناظر میں DGCA نے ایئر لائن سے کہا ہے کہ وہ آتش فشاں کی عراق سے متاثرہ علاقوں سے گریز کریں. भारत और अफगानिस्तान ने टेक्सटाइल के शोबे में इश्तराक बढ़ाने की खातिर बातचीत की है और ढाका में भारत ने चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर लगातार दूसरी मरतबा खवातीन का कबड्डी आलमी कप जीत लिया है। इसके साथ ही अखबार खबरनामा खत्म हुआ।